आइए भगवद गीता पर विचार करते हैं। कल सत्वगुण प्रधान व्यक्तित्व की बात की, आज रजोगुण प्रधान है। रजोगुण डोमिनेट कर रहा है सत्वगुण को, सत्वगुण की मात्रा भी ज्यादा है। 40-60 का रेशियो समझ लो आप, है ना। हाँ, तो उसको कहते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय माने क्षतात्राय थे, जो कोई पीड़ित है, आर्त है, उसकी जो रक्षा करे उसका नाम है क्षत्रिय। अन्याय को समाज से जो दूर करेगा, केवल शक्ति होना और शक्ति होकर के अन्याय करना वो दस्यु कहलाता है, वो क्षत्रिय नहीं कहलाता। न्याय करता है, प्राणियों की रक्षा करता है, धर्म करता है, उसको क्षत्रिय बोलते हैं। मेरी शक्ति तो दस्यु में भी बहुत है। कई तो ऐसे दस्यु होते हैं कि जो राजा के वश में भी नहीं आते, तो ताकत तो उनके पास भी, लेकिन उनको क्षत्रिय नहीं कहते। उनके लक्षण बताए हैं, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमेश्वर भावश्च क्षत्रकर्म स्वभावजम। स्वभावजम माने स्वभावेन जायते इति स्वभावज, जो स्वभाव से पैदा हुए हैं। जन्म से ही जो लक्षण प्रकट हुए हैं, शौर्यम, शौर्य, युद्धे चाप्य पलायनम। शौर्य माने शक्ति इसके अंदर है, और तेज जो सामने उपस्थित हो जाए तो उसके प्रभाव से सब दब जाए, है ना। जैसे सूर्य प्रकट हो गया तो 1000 वॉट की मरकरी उसके आगे दब जाती है, या 100 वाट का बल्ब जल रहा हो और 1000 की मरकरी वहां पर जला दो तो 100 वाट का बल्ब उसके तेज के आगे दब जाता है। ऐसी तेज होता उसमें, वो आ गया तो उसकी बात सब मान लेते हैं, उसके तेज के आगे सबका तेज फीका हो जाता है। धृति, धैर्यवान होता है, बहुत धैर्यवान होता है। और दाक्षम माने कुशलता, युद्ध के मैदान में अगर उसमें कुशलता नहीं होगी तो युद्ध नहीं जीत सकता। पहले तो युद्ध तलवारों से जीता जाता था, इसलिए कुशलता चाहिए थी। आजकल तलवार की जरूरत नहीं है। लाहौर में अगर किसी को मारना हो तो यहीं से एटम बम छोड़ देते हैं लाहौर में। हाँ, तभी तो युग बदल गया, उस समय भी युग ऐसा ही था, लेकिन अब तलवार नहीं है। युद्ध के समय बड़ी कुशलता चाहिए, कौन सा हथियार किसने चलाया है, उस हथियार को कैसे रोका जा सकता है, किस दाव से चलाया, कैसे दाव लगाया जा सकता है। और शासन में कुशलता, शासन तो क्षत्रिय का स्वभाव है ना, उसमें कुशलता चाहिए। अगर राजा कुशल नहीं होगा तो राज्य का नाश हो जाएगा। युद्धे चाप्य पलायनम, युद्ध से भागना नहीं, कुछ भी हो जाए युद्ध से नहीं भागना। पीठ के पीछे से तलवार का वार नहीं होना चाहिए, सामने ही होना चाहिए। और ये विशेषता हमारे यहां क्षत्रियों की रही है। आप देखिए, मरना स्वीकार कर लिया लेकिन युद्ध के मैदान से भागना स्वीकार नहीं किया। महाराणा सांगा का नाम सुना आपने? महाराणा सांगा सुना है? हाँ? नहीं सुना। महाराणा प्रताप का नाम सुना है? बस उनके दादाजी लगा लो आप, ना दादाजी के पिताजी है ना, उनका नाम था महाराणा सांगा। और महाराणा सांगा के शरीर में 80 घाव थे, हाथ एक नहीं था, पैर एक नहीं था, एक आंख नहीं थी, और ये सारे के सारे घाव जन्म से नहीं हुए थे, युद्ध में हुए थे। 80 घाव शरीर में रहते हुए भी वो युद्ध के मैदान से बाहर नहीं निकलते थे, युद्ध के मैदान से बाहर नहीं निकले। एक बार युद्ध में चले गए तो पीठ नहीं दिखाई, 80 घाव थे शरीर में, लेकिन कोई उनको काणा नहीं कहता था, कोई उनको लंगड़ा नहीं कहता था, कोई उनको लूला नहीं कहता था, क्योंकि उन्होंने वो घाव अपने लिए नहीं लिए थे, प्रजा की रक्षा के लिए लिए थे। जितना उनका घाव होता था लोग उतने उनकी पूजा करते थे, क्या बहादुर व्यक्ति है, क्या क्षत्रिय है, क्या राजा है। तो जो परोपकार करता है नाम उसका होता है, भले ही विकल हो जाए वो चाहे विकल हो जाए, लेकिन नाम और यश और कीर्ति उसकी होती है। इसलिए क्षत्रिय का स्वभाव है युद्धे चाप्य पलायनम, युद्ध आ गया तो फिर भागना नहीं। अच्छा, युद्ध भी ऐसी आ जाता था पहले अपने आप, चलते चलते युद्ध आ जाता था क्षत्रियों के सामने, रास्ते में जा रहे हैं, दूसरा भी आ रहा है, बोले क्या है, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। लो, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, फिर क्यों करना चाहते हो? मन आ गया, युद्ध करने चाहते हैं। तो युद्ध की चुनौती को उसी समय स्वीकार कर लेते थे। एक क्षत्र धर्म है दानम, दान देना, और ईश्वर भाव माने शासन करने की शक्ति। ईश्वर भाव का मतलब शासन करने की शक्ति। हमारे राजस्थान में, हमारी तरफ तो नहीं लेकिन चित्तौड़गढ़ साइड में, और जयपुर से इधर आ जाओ तो सारा बोलते खम्मा धनी है ना। खम्मा धनी माने राजा के सामने हाथ जोड़ करके कहते क्षमा महाराज, है ना। तो उनमें ईश्वर भाव था, इसलिए पहले क्षमा मांगते थे, बोलने से पहले क्षमा मांगते थे। वो आज भी चलता है खम्मा धनी, बात करेंगे तो कहेंगे अन्नदाता, आज भी वहां प्रचलित है अन्नदाता। तो ईश्वर भाव होता था क्षत्रियों में, शासन करने की शक्ति होती थी, ये क्षत्र कर्म थे। और उसके बाद कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। वैश्य के क्या कर्म थे? कृषि गोरक्ष वाणिज्य। मनुस्मृति में चार बताए हैं, एक कुशीदक भी बताया, कुशीद माने ब्याज लेना देना है ना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको वहां नहीं बताया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सहज रूप से जो स्वाभाविक गुण है उनको बता रहे हैं। ब्याज का काम स्वाभाविक नहीं है, ब्याज लेना और देना स्वाभाविक कर्म नहीं। विपत्ति आने पर कोई किसी से पैसा लेता है तो उसके बदले उसको, लेकिन ये स्वाभाविक कर्म है वैश्य के। अब आप देखिए आजकल के संदर्भ में किसी को कहीं रिश्वत लेने की, झूठ बोलने की, ठगने की, धोखा देने की आवश्यकता नहीं है। वैश्य है, वैश्य को धोखे से पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। कृषि जो खेती को कर्षण करके फिर अन्न पैदा करके, फल फूल पैदा करके, सब्जियां पैदा करके, यानी जमीन से को तैयार करके और उसमें वनस्पति औषधियों को तैयार करके जब पैसा कमाया जाता है तो उसको कर्षण के कृषि कहते हैं। गौरक्ष माने सभी पशुपालन। गो उपलक्षण है पशु का। किसका उपलक्षण है? पशुपालन। आप पशु पालिए, पशुपालने से बहुत लाभ है। वैसे तो गाय पालने से बहुत लाभ है। देखो, गाय अगर आप पालते हैं तो गोबर उसका बिकता है, गोमूत्र की कितनी दवाइयां बनती हैं आजकल आपको मालूम नहीं। हरिद्वार में तो बड़ी बड़ी फार्मेसी है ना, वो सब के यहां जाते हैं कि गोमूत्र दे दो। कैसा भी हो वो तो सब ले आते हैं, बीमार गाय हो, जवान हो, बछिया हो, बूढ़ी हो, गोबर का हो, कुछ भी हो सब ले आते हैं, क्योंकि उनको तो पीना नहीं है, पिलाना ही तो है, फिल्टर करके पिला देते हैं। इसलिए जो ये आता है ना गोमूत्र बाहर का बाजार का, तो बचना चाहिए इससे। लेकिन गोमूत्र से अभी इसमें इंदौर में तो 80 प्रकार की दवाइयां बनाई हैं गोमूत्र से, कैंसर तक को ठीक करने की बात करते हैं, होता नहीं होता तो भगवान जाने। लेकिन राम सुखदास जी महाराज के थ्रोट कैंसर था ना, उनको थ्रोट कैंसर था तो वो तुलसी के पत्ते और गोमूत्र रोज लेते थे। डॉक्टरों ने उनको बोलने के लिए मना किया था, फिर भी वो डॉक्टरों के मना करने के बाद भी 40-45 साल तक लगातार बोलते ही रहे गौमूत्र और तुलसी के पत्तों से। हमारे यहां अलवर में एक महात्मा है, 100 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो गई, मुझे भी नहीं मालूम था, काफी लोग बाहर से उनके पास दवाइयां लेने जाते हैं कैंसर की, तो वो कुछ दवाइयां देते हैं, दवाइयां वो नेपाल के पहाड़ों से मंगाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो 125 पत्ते तुलसी के गोमूत्र के साथ लेने के लिए बोलते हैं। हालांकि 125 पत्ते तुलसी के बहुत गर्म होते हैं, बहुत गर्म होता तुलसी, लेकिन वो बताते हैं। तो कहने का अर्थ है कि गौमूत्र से कितने प्रकार की चिकित्सा होती है। दूसरी बात, अब आप रोज फिनाइल लगाते हैं ना, फिर भी कीड़े आपको दिखाई दे जाते हैं, रोज फिनाइल लगाना पड़ता है, लेकिन वो शुद्धता वो पवित्रता फिर भी। और गोबर से जब लीप देते थे तो गोबर से लीपने के बाद आपको भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, भोपाल गैस त्रासदी, उससे थोड़ी सी दूर पर एक आर्य समाज मंदिर था, उस आर्य समाज मंदिर में रोज हवन होता था, अग्निहोत्र नियम था उस समाज का। हालांकि आर्य समाज में संडे टू संडे ही हवन होता, रोज नहीं होता, उसमें रोज होता था, तो उस गैस त्रासदी का वहां प्रभाव नहीं हुआ। तो ये जो है गोबर है गाय का, गौमूत्र है गाय का दूध है ना, और अब तो ट्रैक्टर आ गए, नहीं तो बछड़े होते थे तो उससे खेती काम आता था। अब ये जो दूसरी गाय आई है ना, सुअर खाप की, सुअर के नस्ल की जो बनाई है, जर्सी सुअर की नस्ल की बनाई इन्होंने, इसका ना दूध काम का, कुछ भी काम का नहीं है। जैसे वो कांग्रेस घास है ना, कांग्रेस घास किसी काम की नहीं, ऐसे एक कांग्रेस बबूल आई है, पहले मतलब बीज छिड़क दिए होंगे कहीं से ला करके, वो किसी काम की नहीं। ऐसी ये गाय भी किसी काम की नहीं, दूध बहुत होता है, बस इतना ही है कि बिक जाता है, पैसे ज्यादा मिल जाते हैं। देसी जो गाय है उसका दूध अमृत है। आज भी गौमूत्र जब दिया जाता है तो देसी गाय का ही दिया जाता है। तो गौरक्ष माने गौ माने पशु, पशुपालन। आप पशुओं में सभी पशु आ गए, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, गाय है, भैंस है, जितने भी पशु हैं। अच्छा भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण किया, किया या नहीं किया? लेकिन भागवत में तो भैंस का भी नाम आता है, महिषी है ना। चराया तो उन्होंने भैंस भी था, लेकिन अब विद्वानों ने बदल दिया कि भाई महिषी माने वो गाय जो बड़ी हो गई थी है? पर चलो जो भी हो, शब्द तो है वहां। और वो तो वैश्य थे, वैश्य कुल में थे उस समय तो नंद के यहां, नंद के यहां वैश्य कुल में थे तो पशुपालन उनका वो था, व्यवसाय था। और जब पशुपालन उनका व्यवसाय था तो मानो भैंस भी ले गए होंगे तो क्या दिक्कत है। तो आप देखिए जो सहज कर्म है उसमें आपको कहीं रिश्वत नहीं लेना पड़ता, कहीं किसी को धोखा नहीं, कहीं कोई छल कपट नहीं करना पड़ता। आप पैसे कमाइए, खेती करके कमाइए, पशुपालन करके कमाइए, और वाणिज्य माने व्यापार। वाणिज्य माने व्यापार क्या है? व्यापार जैसे मान लो एक चीज बॉम्बे में होती है, एक चीज दिल्ली में होती है। दिल्ली की बॉम्बे आ जाए और बॉम्बे की दिल्ली चली जाए, ये व्यापार है। तो आप किसी को बॉम्बे की चीज जो बॉम्बे में पैदा हो रहा अनाज, महाराष्ट्र में मूंगफली आदि, गुजरात में, वो अगर दूसरे प्रांत में या दूसरे देश में ले जाकर के देते हैं और उससे अपनी आजीविका चलाते हैं, तो उसमें कहां धोखा छल कपट कहां है? या वहां की वस्तु जो वहां पैदा हो रही है, या वहां जो मिल है कपड़े की, या वहां जो फैक्ट्री है किसी भी चीज की, तो वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और बेचना, उसको कहते हैं अभाव की पूर्ति। क्या कहते हैं उसको? एक जगह का अभाव जहां है उसको दूसरी जगह से सामान ला करके उसके अभाव को पूर्ति कर देना, वहां जो अभाव है उसको यहां से ला करके वहां की पूर्ति कर देना। ये जो अभाव की पूर्ति, इसको समझो, अभाव की पूर्ति समझ लो व्यापार को। इस व्यापार में भी जो सहज कर्म है ना, स्वाभाविक कर्म है वैश्य का, वो वैश्य का स्वाभाविक कर्म है खेती करना, पशुपालन करना और व्यापार करना। इन देखिए भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही है वैश्य के लिए, शुद्ध या ब्राह्मण के लिए, किसी के लिए भी, आज हम धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं, फ्रॉडलेंट करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, हम मिलावट करते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर भगवान कृष्ण की बातों पर ध्यान दो तो न कहीं आपको मिलावट करना, न किसी को धोखा देना, न किसी को ठगना, आपका जो खेती के द्वारा, पशुपालन के द्वारा या व्यापार के द्वारा जो आपका प्रतिशत बंधा हुआ है, एक फिक्स प्रतिशत, उसके हिसाब से आप व्यापार करो। आपका व्यापार करते हुए भी आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। ये भगवान की बड़ी सुंदर बात कही। और परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। जो ना व्यापार कर सकता हो, ना किसी की रक्षा कर सकता हो, और ना ही किसी को ज्ञान दे सकता हो, है ना। ब्राह्मण माने अज्ञान की निवृत्ति, क्षत्रिय माने अन्याय की निवृत्ति, और वैश्य माने अभाव की निवृत्ति। समझ गए आप? मैं संक्षेप में वैसे आज की बता रहा हूं, आप इसको ऐसा समझ लें। ब्राह्मण माने अज्ञान दूर करना, क्षत्रिय माने अन्याय दूर करना, वैश्य माने अभाव को दूर करना। जो ना किसी का अज्ञान दूर कर सकता हो, ना किसी का अन्याय दूर कर सकता हो, और ना अभाव दूर कर सकता हो, तो वो इनकी सेवा करे, वो इनकी सेवा करे, फिर सेवा बचता है। अब यहां पर भी आप देखिए, सेवा करना कठिन तो है, सहज तो नहीं है, जैसे व्यापार करना सहज नहीं है। अब तो आप बाय चेक, बाय कोरियर या फैक्स से या नेट से या जिस किसी से भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो यहां बैठे कहीं भी। उस समय तो व्यापार करना होता था या पैसे ले जाना होता था, चांदी के या सोने के सिक्के होते थे। आपको घड़े में मटके में डाल करके बहुत भारी होता था वजन, ले जाना पड़ता था ऊंट गाड़ी से, बैलगाड़ी से। ऊंट गाड़ी देखी आपने, है ना, या बैलगाड़ी तो देखी होगी, उससे चलना पड़ता था। जंगल भारे थे, रास्ता था नहीं, दस्यु डाकू जो है जंगलों में मिलते थे, उसके लिए राजा को टैक्स दिया जाता था, राजा उनकी रक्षा करते थे, राजा रक्षा करते थे, उस समय उनकी सेवा करना बड़ा कठिन था। लेकिन जो ना अभाव दूर कर सकता हो, ना अन्याय दूर कर सकता हो, ना अज्ञान दूर कर सकता हो, उसको कहते थे शूद्र। अब शूद्र का वो अर्थ या नहीं है जो हमने लगाया कुछ दिनों से, है ना, ठीक है ना, शूद्र। तो ये आ गया समझ में आपके में, ये स्वभाव है, ये क्या है, जन्म से ही जिसके अंदर आते हैं सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के कारण। आज भी बहुत से ऐसे हैं जो ना पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो आगे देखिए भगवान क्या कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणुहु। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः नरः संसिद्धिम लभते, अपने अपने कर्म में अभिरत हुआ, यानी अपने अपने कर्म को रुचि से करता हुआ। अब ऐसा मान लो एक व्यक्ति रास्ते पर खड़े होकर के गोलगप्पे खा रहा है और एक शुद्ध ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण रास्ते से जा रहा है, वो कह रहा है यार गोलगप्पे खाने का तो हमारा भी मन है लेकिन क्या करें, इस ब्राह्मण है रोड पर खड़े होकर के हम खा नहीं सकते, तो इसका मतलब उसको अपने कर्म में अभिरुचि नहीं है, मजबूरी है क्योंकि रस गोलगप्पे खाने का मन कर गया वहां। गोलगप्पे खाना बुरा नहीं है, गोलगप्पे कहते हैं क्या कहते हैं यहां, पानी के पतासे, हाँ पानी के पतासे कह लो, बंगाल में पुचका कहते हैं। हम चले गए एक बार कलकत्ता तो बोले महाराज जी आप पुचका खाते हैं, हमने कहा भाई पहले चीज सामने ला करके रखो तब बताएंगे, हमारी समझ भी नहीं आया। तो पानी के पतासे खाना बुरा नहीं, आज भी अच्छे लोग परिवार के लोग घरों में बना करके खाते हैं, खाते ना, वहां बैठ करके आराम से जैसे प्रसाद लेते हैं वैसे लोग। तो ब्राह्मण तो है लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी कहीं न कहीं उसको ये मन में भाव आ गया, काश हम भी अगर दूसरे ब्राह्मण नहीं होते तो हम भी रोड के ऊपर बैठ करके ही। मैं तो एक उदाहरण दिया, आप उदाहरण समझना, ऐसा ना हो कि गोलगप्पे के लिए लेकर के बैठ जाए, एक उदाहरण दिया आपको। तो जो अभिरुचि अभिरता हमारे अच्छे प्रकार से अपने कर्म को जो रुचिपूर्वक करता है, ब्राह्मण अपने कर्म को रुचिपूर्वक करे। देखो सारे कर्म कठिन है, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो सहज और सरल हो, लेकिन ये सत्वगुण प्रधान रजोगुण प्रधान तमोगुण प्रधान इनमें सहजता से आते हैं। ब्राह्मण नदी के किनारे जाकर के और जल में खड़े होकर के दो घंटा तीन घंटा गायत्री जप कर सकता, क्षत्रिय नहीं कर सकता। क्षत्रिय कोई किसी को पीट रहा हो, गरीब को सता रहा हो, वहां जाकर के बीच में बोल सकता है, ब्राह्मण नहीं बोल सकता, वो स्वाभाविक गुण नहीं है उसका, वह स्वाभाविक गुण नहीं है। तो अपने अपने जो माया के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, सत्व गुण तमोगुण और रजोगुण के द्वारा जो उसको जन्म से ही सहज रूप से गुण प्राप्त हो गए हैं, उन कर्मों को वह अपनी रुचि के अनुसार करता है तो वह भी सिद्धि को प्राप्त। आपने महाभारत का दृष्टांत बहुत सुना है, एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, ब्राह्मण, उनकी दृष्टि से कबूतर जल जाता है ना। वो गांव में आ जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। एक पतिव्रता नारी कहती है कि मैं वो कबूतर नहीं हूं जो तुम्हारी दृष्टि में जल करके मर जाऊंगे। उसने अपना गुरु बता दिया कि मिथिला नगरी में है, वहां जाकर देखा तो वो व्याध था। क्या था? व्याध था। तो कहानी मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपकी सबकी सुनी हुई है। तो व्याध अपना व्याध कर्म करते हुए भी संसिद्धि को प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें कर्म में आसक्ति नहीं थी, कर्म में रुचि थी कि मुझे जन्म से यही कर्म प्राप्त हुआ है। पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार, पूर्व जन्म के कर्म की वासना के अनुसार मेरा जन्म ऐसी जगह हुआ है और यही कर्म मुझे प्राप्त हुआ है, और वही कर्म करते हुए, कर्म में आसक्ति ना रखते हुए, मोह ना रखते हुए और कर्म करते हुए भी वह व्याध सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अच्छा, भगवान की भक्ति के लिए कौन सा कर्म अच्छा, कौन सा कर्म बुरा है? देखो, ये आपके सामने हम उदाहरण दे रहे हैं, बहुत लंबे नहीं, आपके सबके सुने हुए हैं। रैदास का नाम सुना आपने? हैं? क्या जी? हाँ चलो, दोनों ही ठीक है। मेरा भाई की सास के गुरु थे वो। वो कह रहे मेरा भाई के गुरु थे, उनकी सास के गुरु थे। हम जो कहने चाह रहे हैं वो समझो, क्या काम करते थे वो, संसिद्धि को प्राप्त हुए या नहीं हुए? एक ब्राह्मण वेदाध्ययन करते हुए ब्रह्म को प्राप्त करता है, और एक आजकल की भाषा में उसको शब्द को बोलना नहीं चाहिए, संविधान ने मना कर दिया है, पर फिर भी समझने के लिए, एक चमार जुत्ती गांठते हुए भी उसी ब्रह्म को किया या नहीं किया? ये तो हमारे सामने, सबके सामने। अच्छा, महाराष्ट्र में देखो, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, समर्थ गुरु रामदास, लेकिन गौरा है ना, गौरा है, हाँ जो भी है, गौरा वेद मंत्र पढ़ता था या मटकी बनाता था? मटकी बनाता था ना। तो वेद मंत्र पढ़ना ज्यादा अच्छा है या मटकी बनाना ज्यादा अच्छा है? ये सब आपके सामने उदाहरण है, हम कहीं बाहर से थोड़ी लाए। मटकी को बनाने वाला, घड़ा बनाने वाला गोरा कुम्हार भी उसी सिद्धि को प्राप्त करता है, और निवृत्तिनाथ के शिष्य ज्ञानदेव भी उसी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। आपके सामने उदाहरण है। क्षत्रियों के उदाहरण तो महाभागवत में भरे पड़े हैं। सभी क्षत्रियों ने भगवान को प्राप्त किया, युद्ध करके भी, लोगों को मार के भी, हिंसा करके भी प्राप्त किया या नहीं किया? तो आप बताओ कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है? है ना, बात विचारनी है या नहीं है? तो भगवान ने यहां पर यही बात भगवान यहां पर कही है। आप ये मत देखो कि आप क्या कर रहे हो, आप ये देखो आप किस भाव से कर रहे हो। अभी गुजरात में घटना घटी कि कुछ लोगों की पिटाई करनी, कि वो चमड़ा निकाल रहे थे गाय का। अब ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं चली थी उस समय, चमड़े की जुत्ती बनाई जाती थी, कौन बनाते थे? चमड़ा निकालते थे या नहीं निकालते थे, तब तो उनकी पिटाई किसी ने नहीं की। क्यों? क्योंकि उस समय समाज को उनकी आवश्यकता थी। अगर वो नहीं निकालेंगे मरे हुए पशु की खाल, तो उसे दो काम है, एक तो बदबू फैलेगी, खाल निकालने के बाद उस समय गिद्ध होते थे, गिद्धा से तो दिखाई नहीं देते, वो एकदम टूट पड़ते थे और एक डेढ़ घंटे में ही सारे उसको खा जाते थे। तो जो मरे हुए पशु की खाल निकाल रहा है, अगर वो पशु मार करके नहीं निकालता, मार के निकालने पे तो हिंसा है, अगर पशु मार के नहीं निकालता और मरे हुए को इसलिए निकालता है कि भी मेरी इससे जीविका चलती है, मेरी इससे जीविका चलती है, और फिर वो चमड़ी बना करके बेचता है और अपने कर्म में अविरत रहते हुए दया करुणा प्रेम स्नेह सारे गुण उसके अंदर हैं, तो बताओ उसको भगवान मिलेगा या नहीं मिलेगा। भगवान शंकराचार्य महाराज मांडुक्य कारिका तो आपने कई बार प्रवचन सुने हैं, आलात शांति प्रकरण है उनमें, उसमें के कारिका के भाष्य में, कारिका तो मेरे को ध्यान नहीं कौन सी है, 195 या 95 कुछ ऐसी है, वो लिखते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति में सबका अधिकार है। ब्रह्म की प्राप्ति में अच्छा क्यों है, कर्म में सबका अधिकार नहीं है, कर्मकांड में ब्रह्म की प्राप्ति में सबका अधिकार क्यों है बताओ। अरे सभी ब्रह्म रूप तो हैं, अपने आप को जानना ही तो है। कोई चीज पैदा करनी हो उसमें तो देखा जा सकता है तुम कर सकते हो और तुम नहीं कर सकते, वहां तो पैदा करनी नहीं, केवल अज्ञान का आवरण ही तो हटाना है। जो आवरण ढल गया अज्ञान का, जो पर्दा ढल गया अज्ञान का, उस पर्दे को हटाना है, कोई भी हटा सकता है, उसकी एक सीमा है। जैसे मान लो 6 फुट है तो उसको उतना बड़ा होना पड़ेगा कि वो 6 फुट के पर्दे को हटा दे, उसके लिए आवश्यक है। तो भगवान कहते हैं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नारा। अपने अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भी ईमानदारी से अपना अपना कर्म करें, और इन चारों कर्मों का आपने स्वाभाविक कर्म पर देखे, चारों में ही स्वाभाविक कर्म में कहीं धोखा नहीं देना, कहीं छल नहीं करना, कहीं कपट नहीं करना, कहीं नहीं करना, आजीविका आराम से चलती है, कहीं कुछ नहीं करना इसमें। तो बिना धोखा दिए, बिना छल किए, बिना कपट किए, अगर ये इसलिए करते हैं कि मेरा ये कर्म है, मुझे जन्म से प्राप्त हुआ है, मेरा स्वाभाविक कर्म है, इसलिए करते हैं, तो अपने अपने कर्म को करते हुए वो अंतःकरण का शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि शुद्ध होगी, भाव शुद्ध होंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में उनको ब्रह्म की प्राप्ति हो ही जाएगी। स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। लेकिन उनको कैसे मिलती है ये सिद्धि, उनको ये प्राप्ति कैसे मिलती है, जैसे मिलती है वैसे मैं बता रहा हूं, आप सुनो। कौन कह रहे हैं बात? श्री कृष्ण अर्जुन को। अब देखो एक श्लोक की व्याख्या और करते हैं ना। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। अब ये महत्वपूर्ण बात है, सिद्धि तो प्राप्त होगी लेकिन कैसे होगी, ये महत्वपूर्ण बात है। भगवान ने बीच बीच में कितनी बार का, जो अर्जुन तू कुछ करता है मेरे को सौंप दे, है ना, कितनी ही बार का है। तो कर्म का सिद्धांत क्या है? कर्म का सिद्धांत है जो जैसा करेगा उसको वैसा ही, ठीक है ना, वैसे फल मिलेगा। एक और निष्काम कर्म का सिद्धांत क्या है? कामना रहित कर्म, कामना रहित कर्म। कामना क्या है? मुझे धन मिले, पैसा मिले, ऐश्वर्य मिले, पुत्र मिले, या जो कुछ संसार की संपदाओं की कामनाएं हैं। और ये निष्काम कैसे हुआ जा सकता है? देखो, योग दर्शन में बहुत सुंदर बात कही, बड़ी प्यारी। वहां कहा है कि यदि आप चाहते हो कि आपका चित्त स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए, तो उसके कई उपाय बताए हैं। एक उपाय वहां बताया, वीतराग विषयम व चित्तम। किसी वीतराग पुरुष के साथ अपने आप को जोड़ दो, ठीक है ना, है राग रहित, जिसमें कोई राग नहीं है। राग भी नहीं तो द्वेष भी नहीं, दोनों उसमें इंक्लूड हो जाते हैं ना। तो इसी तरह से आप कर्म का कि कामना रहित कर्म कब होगा? जब हम अपने कर्मों को भगवान को सौंप देंगे। अच्छा, भगवान में भी बड़ी व्याख्या है महाराज। अभी एक नया विवाद पैदा हो रहा है, आपको मालूम ही है, हम उसमें ज्यादा बोलते नहीं। साईं को भगवान माने या है ना, तो सबके अपने अपने भगवान हो गए हैं, सबके अपने अपने। बड़ी समस्या है, कलयुग है महाराज, है ना। यहां तो अगर साईं के मंदिर में चढ़ावा नहीं आता तो साईं भगवान बनने वाले नहीं थे। ये जो पैसा है ना, पैसा पैसा किसी को भगवान बना देता है। खैर चलो, जो भी है, हम उस बहुत विवाद में नहीं जाना चाहते। लेकिन आखिर भगवान है क्या? अच्छा, गुजरात में अंबाजी का मंदिर है, अंबाजी का मंदिर। हम पहले गए जब तो छोटा सा ही था, कोई व्यवस्था भी नहीं थी और कोई खास बड़ा भी नहीं था और साफ सुथरा भी नहीं था, व्यवस्था ही नहीं थी इतनी। और अभी तो बड़ा दिव्य बना दिया है ना, बना दिया ना। बहुत भीड़ जाने लग गई, और इतनी भीड़ जाने लगी कुछ तो महीने में एक बार जरूर ही जाते हैं, ठीक है ना। तो आप अंबाजी है, महाराष्ट्र में साईं बाबा है, महाराष्ट्र में गणेश जी महाराज हैं, गणपति बप्पा मोरिया। अच्छा, ये तो नाम वैसे ही गिना है, कुछ ऐसे भी भगवान है जो आजकल जीवित भी हैं, सरवाइव कर रहे हैं बॉडी में। तो हम भगवान को सौंपे, लेकिन कौन से भगवान को? है ना, कौन से भगवान को सौंपे? राम को, कृष्ण को, शिव जी को, दुर्गा जी को, गणेश जी को, और तमाम छोटे छोटे भगवान हैं। साईं बाबा जैसे भारत में बहुत हैं, अकेला साईं बाबा ही नहीं है, साईं बाबा जैसे और भी बहुत हैं। एक बालाजी है, मेहंदीपुर बालाजी, एक सालासर बालाजी है, एक कितने ही हैं। तो कौन से भगवान को सौंपे? तो देखिए, आप भगवान की कौन है वो देखिए। आप भगवान को अपने दिमाग में रखिए, परमात्मा क्या है। भगवान श्री कृष्ण यहां पर बता रहे हैं कि पहले ये देख लो कि ईश्वर है क्या। तो वहां लिखते हैं, यतः प्रवृत्तिर भूतानाम। यतः प्रवृत्ति में दो बात बताई है, एक जहां से संपूर्ण भूत प्रकट हुए हैं, जड़ और चैतन्य। दूसरा अर्थ है जहां जिनसे संपूर्ण भूतों की चेष्टाएं हैं, गति है, क्रियाएं हैं, संपूर्ण भूतों में क्रिया जिसके कारण से विद्यमान है, अच्छा हम कहते हैं कि चेतन में तो क्रिया देखने को मिलती है, मिलती ना देखने को, तो क्या अचेतन में क्रिया होती है? देखिए परमात्मा की पहचान करो धीरे धीरे, हैं? क्या जड़ में क्रिया है? अच्छा इसमें क्रिया है, ईमानदारी से बताना, इसमें क्रिया है? अगर इसमें क्रिया नहीं है तो धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण क्यों होता है? भाई परिणाम कब आएगा? विकार कब आएगा? जब कोई क्रिया होगी तभी तो आएगा ना। एकम के लिए पहले कहा जाता था कि अनडिवाइडेड बल है, फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन किया, फिर उनको भी डिवाइड कर दिया, और अब बहुत कोशिश करने पर भी कहे उनमें भी क्रिया है, उनमें भी क्रिया है, इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती। हमारे ऋषियों ने कहा, सांख्य ने कहा, प्रकृति है सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। अब ये जब प्रकृति सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण है तो रजोगुण क्या है? क्रियात्मक है या नहीं है? तो जो मूल अवस्था, प्रकृति की मूल अवस्था है, इनविजिबल जिसको कहते हैं, अव्यक्त अवस्था, अनमैनिफेस्टेड और इनविजिबल स्टेट ऑफ नेचर, अव्यक्त अवस्था जिसको कहते हैं, उस अव्यक्त अवस्था में भी क्रिया विद्यमान है। तो उस अव्यक्त अवस्था में जब क्रिया विद्यमान है तो सभी व्यक्त अवस्थाओं में भी क्रिया विद्यमान है, और हमारे अंदर भी चेतन का प्रतिबिंब हो रहा है तो क्रिया विद्यमान है। तो जो सभी भूतों में क्रिया को प्रदान करने वाला है, चेष्टा को प्रदान करने वाला है, जिसके कारण सभी प्राणियों में, सभी भूतों में, जड़ और चेतन में चेष्टा हो रही है, समझ रहे हैं आप? अच्छा बताओ साईं बाबा से हो रही है क्या है? मैं विरोध की दृष्टि से नहीं कह रहा, मैं तो परमात्मा के स्वरूप को बता रहा हूं, है ना? हमारा किसी से विरोध नहीं, हम नहीं मानते साईं बाबा को, नहीं मानते, और स्वरूपानंद जी ने तो आज कहा, हम तो कभी से नहीं मानते थे, वो हमारी अपनी आस्था है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उनको गाली देने लग जाएंगे, भी ठीक नहीं है। किसी में किसी की आस्था और किसी में किसी की नहीं है, लेकिन यहां परमात्मा का स्वरूप समझ लो आप, यहां स्वरूप समझ लो परमात्मा। अगर आप परमात्मा का ये स्वरूप समझेंगे तो वेदांत की दृष्टि में, देखो एक है वेदांत की दृष्टि, वेदांत की दृष्टि तो सभी परमात्मा, क्योंकि सभी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सोम आया वस भयो गोसाई बंध्यो कीर, तो सभी परमात्मा के अंश हैं, जिसमें जितनी शक्ति जागृत हो गई वो उतना बड़ा हो गया, जिसमें कम रही वो उतना। अब हमारा मनुष्य का स्वभाव क्या है कि थोड़ी सी शक्ति जागृत हो जाती है तो हम उसको भगवान कहने लग जाते हैं, ठीक है ना? लेकिन ठीक है, वो सिद्ध हैं, संत हैं, अच्छी बात है, लेकिन परमात्मा का असली स्वरूप तो ये है, कोई सिद्ध है, कोई संत है, कोई क्रिया संकल्प है, संकल्प प्रधान है, उनकी जो संकल्प करते हैं वो पूरा हो जाता है, किसी को सिद्धियां मिल जाती हो कहते तो इसका रोग ठीक हो जाए तो रोग ठीक हो जाता है, और जब ऐसा हो जाता है हम उनको भगवान कहने लग जाते हैं, और कहना भी चाहिए, भगवान माने जो ऐश्वर्यशाली, भगवान माने उनमें ऐश्वर्य तो है ही, तो बात वो नहीं, मूल बात यह है कि भगवान का वास्तविक स्वरूप देखो, भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं। आप साईं बाबा को भगवान कहें, हमें तो कोई आपत्ति है नहीं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि कहीं न कहीं व्यक्ति में भगवत्ता आती है। भगवत्ता माने दिव्य गुण, तो वो दिव्य गुण भगवान के ही आते हैं और किसी के नहीं आते। आज मेरे अंदर दिव्यता आ जाए तो दिव्यता कहां से आएगी बताइए, कहां से आएगी? भगवान से आएगी। और आएगी क्या है, बस उसको जागृत करना है। वो चाहे आप हो, मैं हो या कोई भी हो, लेकिन जो यथार्थ स्वरूप है वास्तव में परमात्मा का, वो तो यही है कि जो संपूर्ण प्राणी जहां से प्रकट हुए हैं और संपूर्ण प्राणियों की चेष्टा, संपूर्ण प्राणियों में क्रिया जहां से है, यतः प्रवृत्तिर भूतानाम। और दूसरा विशेषण दिया, येन सर्वमिदं ततम, तनु विस्तारे धातु, ततम माने जिसने सभी को अपने अंदर समाहित, ईशा वाश्यम इदम सर्वम। दूसरे शब्दों में यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च, और उपनिषद की भाषा में यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवा भूत विजानतः तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यत। येन सर्वमिदं ततम, जो सब जगह व्यापक है और जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर समाया हुआ है। आप शांति पाठ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं शांति पाठ में? ओम पूर्णम अदः, ठीक है ना, और पूर्णम इदम। वो जो अदः है वही इदम है, उसी का नाम अदः है और उसी का नाम इदम है। तो जिसने सबको अपने अंदर समाहित कर रखा है, जो सब जगह व्यापक है, ततम माने व्यापक है ना, येन सर्वमिदं ततम, सारा का सारा संसार उसी ईश्वर से व्यापक है, व्याप्त है, ढका हुआ है, ऐसे परमात्मा को, ऐसे परमात्मा को स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, तम है ना परमात्मानम, उस परमात्मा को अपने कर्म से अभ्यर्च करके यानी पूजा करके। अब देखो पूजा काया रूप बदल गया ना, अब तक तो हम थाली सजाते थे, उसमें रोली मोली सुपारी अक्षत है, फूल चंदन ये सब रखते थे, फिर आरती करते थे, थाली घुमाते थे। अब यहां पूजा का अर्थ क्या हो गया? जो भी कर्म करो उस भगवान की उपस्थिति में करो। आगे समझ में, जो भी कर्म करो भगवान की, यानी उसको सौंप करके करो। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा की पूजा करो। अच्छा एक बात है, एक ब्राह्मण है और वो शिवजी की आराधना कर रहा है और रुद्राष्टाध्याय से कर रहा है, विधि विधान से कर रहा है। एक भील है, उसको अष्टाध्यायी रुद्राष्टाध्यायी कोई सी अष्टाध्यायी मालूम ही नहीं, नाम ही नहीं सुना। शिव की पूजा वो भी कर रहा है लेकिन उसको विधि विधान का मालूम नहीं। वो जाता है फूल पत्ती तोड़ता है, जैसे भी शिवजी के ऊपर चढ़ाता है, पानी चढ़ा देता है, दंडवत प्रणाम करता है और उसके भाव में वहां बैठ जाता है। दोनों की पूजा में क्या फर्क है? अगर ब्राह्मण होकर के, यदि ब्राह्मण होकर के रुद्र सूक्तम के द्वारा पूजा नहीं करेगा तो ब्राह्मण को फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वह उसका स्वाभाविक कर्म है। और अगर भील होकर के रुद्रम सूक्तम के द्वारा वो पूजा करेगा तो रुद्र सूक्तम शुद्ध पढ़ा नहीं जाएगा, उच्चारण अच्छा नहीं होगा, तो उसको भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे शुद्ध पढ़ा नहीं जाएगा, उच्चारण ठीक से होगा नहीं, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण जो पूजा कर रहा है विधि विधान से, वैदिक विधि विधान से, और भील जो पूजा कर रहा है बिना विधि विधान के, यदि दोनों का भाव परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए है तो दोनों का फल बराबर है। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अपने अपने जो स्वाभाविक उनके धर्म हैं, स्वाभाविक उनके कर्म हैं, जो जन्म से संस्कार के कारण उनको मिले हुए हैं, उन कर्मों को भगवान को सौंपते हुए, भगवान की पूजा करते हुए वे निश्चित रूप से संसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। शेष चर्चा कल, आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।